नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। प्रूफ ऑफ स्टेक, द मेकिंग ऑफ इथेरियम एंड द फिलोसफी ऑफ ब्लॉकचेन्स। इथेरियम के सह संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन के लगभग एक दशक में लिखे गए निबंधों का संपादित संकलन है। इसका संपादन मीडिया अध्येता नेथन श्नाइडर ने किया है। यह कोई क्रमबद्ध इतिहास, शुरुआती मार्गदर्शिका या निवेश सलाह की पुस्तक नहीं है। इसके बजाय यह उन तकनीकी और वैचारिक सवालों तक पहुंचती है जिनसे इथेरियम की कल्पना बनी, जैसे विकेंद्रीकृत समन्वय, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सार्वजनिक वस्तुएं, शासन और नेटवर्क सुरक्षा। ब्यूटेरिन का केंद्रीय आग्रह है कि ब्लॉकचेन को केवल डिजिटल मुद्रा या सट्टा बाजार की तरह देखना अधूरा है। उनके लिए यह इंटरनेट पर संस्थाएं बनाने, साझा संसाधनों का प्रबंधन करने और लोगों के बीच भरोसे की लागत घटाने का माध्यम हो सकता है। पुस्तक का शीर्षक प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर इशारा करता है, पर इसकी सीमा सहमति तंत्र तक नहीं रुकती। लेख तकनीकी डिजाइन को सामाजिक परिणामों से जोड़ते हैं। हालांकि पाठक को क्रिप्टोग्राफी और इथेरियम की बुनियादी भाषा की कुछ पूर्व समझ होने पर इससे अधिक लाभ मिलता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, इथेरियम को मुद्रा से आगे सामान्य उद्देश्य वाले सामाजिक ढांचे के रूप में देखना। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि इथेरियम को बिटकॉइन की नकल करने वाली दूसरी डिजिटल मुद्रा नहीं समझना चाहिए। ब्यूटेरिन की मूल कल्पना एक ऐसे सामान्य उद्देश्य वाले ब्लॉकचेन की थी, जिस पर पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार चलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सके। इससे धन के हस्तांतरण के अलावा समझौते, सामुदायिक कोष, डिजिटल संपत्ति और इंटरनेट आधारित संगठनों जैसे प्रयोग संभव होते हैं। इस दृष्टि में तकनीक का मूल्य केवल लेनदेन की गति में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों में है जहां लोगों को साझा नियमों पर भरोसा करना होता है। मगर किसी एक कंपनी, बैंक या राज्य को निर्णायक नियंत्रक नहीं बनाना चाहते। पुस्तक इस संभावना को उत्साह के साथ रखती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हर सामाजिक समस्या का समाधान ब्लॉकचेन है। किसी भी प्रणाली की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका नियम किसने बनाया, उसे कौन बदल सकता है, भागीदारी कितनी खुली है और विफलता की स्थिति में जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए ब्यूटेरिन का योगदान तकनीकी सुविधा के दावे से अधिक इंटरनेट पर संस्थागत डिजाइन की बहस खोलने में है। पाठक समझता है कि इथेरियम की महत्वाकांक्षा ऐप बनाने भर की नहीं, बल्कि डिजिटल समन्वय के नियमों को प्रोग्राम योग्य बनाने की है। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक में सुरक्षा, ऊर्जा और आर्थिक दंड का संबंध। प्रूफ ऑफ स्टेक उस सहमति व्यवस्था का नाम है जिसमें नए ब्लॉक प्रस्तावित और सत्यापित करने वाले भागीदार अपनी क्रिप्टो संपत्ति को हिस्सेदारी के रूप में लॉक करते हैं। गलत व्यवहार करने पर उनकी हिस्सेदारी का एक भाग काटा जा सकता है, जिसे स्लैशिंग कहा जाता है। यह मॉडल प्रूफ ऑफ वर्क से अलग है, जहां नेटवर्क सुरक्षा के लिए विशाल कंप्यूटिंग शक्ति और बिजली खर्च की जाती है। ब्यूटेरिन के लेखों में प्रूफ ऑफ स्टेक का तर्क केवल कम ऊर्जा खपत नहीं है। मुख्य विचार यह है कि हमला करने वाले के लिए आर्थिक नुकसान को वास्तविक और प्रत्यक्ष बनाया जाए, जबकि ईमानदार प्रतिभागियों के लिए नेटवर्क की रक्षा अपेक्षाकृत कम संसाधन में संभव हो। फिर भी पुस्तक की बहस को किसी सरल घोषणा की तरह नहीं पढ़ना चाहिए कि प्रूफ ऑफ स्टेक अपने आप विकेंद्रीकरण सुनिश्चित कर देता है। बड़ी हिस्सेदारी रखने वालों का प्रभाव, सत्यापन में प्रवेश की लागत, प्रतिनिधि सेवाओं पर निर्भरता और नियमों की जटिलता वास्तविक प्रश्न बने रहते हैं। इथेरियम का प्रूफ ऑफ स्टेक में परिवर्तन पुस्तक के प्रकाशन के समय के आसपास हुआ, इसलिए संकलन को उस लंबे वैचारिक और इंजीनियरिंग प्रयास के दस्तावेज की तरह भी पढ़ा जा सकता है। यह दिखाता है कि सहमति तंत्र केवल तकनीकी विकल्प नहीं, बल्कि प्रोत्साहन, दंड और शक्ति वितरण का डिजाइन है। तीसरा, उच्च तकनीकी लागत के बदले कम सामाजिक लागत का तर्क। ब्यूटेरिन का एक उपयोगी और कुछ हद तक उल्टा लगने वाला विचार यह है कि ब्लॉकचेन का उद्देश्य हमेशा कंप्यूटिंग लागत घटाना नहीं होता। कई स्थितियों में यह तकनीकी रूप से महंगा हो सकता है, क्योंकि अनेक प्रतिभागी एक ही स्थिति को सत्यापित करते हैं और सहमति के लिए जटिल प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। लेकिन उनका तर्क है कि यदि इससे मानवीय समन्वय, निगरानी, विवाद समाधान या बिचौलियों पर निर्भरता की सामाजिक लागत घटती है, तो यह विनिमय उचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग पक्षों को किसी साझा रजिस्टर या तय नियम पर भरोसा दिलाने के लिए परंपरागत व्यवस्था में संस्थान, ऑडिट और कानूनी प्रक्रियाएं लग सकती है। प्रोग्राम योग्य नियम कुछ मामलों में इस समन्वय को सरल बना सकते हैं, फिर भी यह तर्क शर्तों के साथ ही प्रभावी है। गलत डेटा को ब्लॉकचेन में दर्ज कर देने से वो सही नहीं हो जाता, और वास्तविक दुनिया के विवाद केवल कोर्ट से समाप्त नहीं होते। तकनीकी अपरिवर्तनीयता कभी कभी सुधार और अपील को भी कठिन बना सकती है। पुस्तक की शक्ति इस तनाव को देखने में है। यह विकेंद्रीकृत प्रणालियों को प्रशासन का सस्ता विकल्प मानने के बजाय तकनीकी खर्च और सामाजिक भरोसे के बीच कठिन संतुलन का प्रस्ताव मानती है। चौथा, सार्वजनिक वस्तुओं के लिए सामूहिक वित्त पोषण और लोकतांत्रिक समन्वय। पुस्तक में बार बार यह संभावना आती है कि ब्लॉकचेन समुदायों को धन एकत्र करने और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को सहायता देने के नए तरीके दे सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं वे संसाधन हैं जिनका लाभ व्यापक लोगों को मिलता है, जैसे खुला स्रोत, सॉफ्टवेयर, ज्ञान, बुनियादी डिजिटल ढांचा या सामुदायिक सेवाएं। ऐसी वस्तुओं के लिए बाजार से पर्याप्त वित्त जुटाना कठिन होता है, क्योंकि लाभ पाने वालों को भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ब्यूटेरियम की दिलचस्पी ऐसे तंत्रों में है जो छोटे योगदानों को जोड़े, समुदाय की प्राथमिकताएं प्रकट करें और दान अथवा अनुदान के वितरण को अधिक पारदर्शी बनाएं। यह विचार उनकी व्यापक इंटरनेट मूलक समाज की कल्पना से जुड़ता है। फिर भी केवल टोकन आधारित मतदान या खुला योगदान लोकतंत्र के बराबर नहीं है। धनवान भागीदारों का असमान प्रभाव, मतदाता उदासीनता, पहचान की समस्या और लोकप्रियता आधारित निर्णय जैसे जोखिम बने रह सकते हैं। आलोचकों ने भी पुस्तक में इसी बिंदु पर अधिक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि की कमी देखी है। इसलिए इसका विवेकपूर्ण पाठ यह है कि ब्लॉकचेन सार्वजनिक वित्त के प्रयोगों के लिए औजार दे सकता है, पर न्याय, प्रतिनिधित्व और वितरण के प्रश्नों का समाधान अपने आप नहीं करता। संस्थागत नियम और सामाजिक वैधता अभी भी निर्णायक हैं। अंत में, विकेंद्रीकरण की आकांक्षा और शासन की अधूरी राजनीतिक समस्या प्रूफ ऑफ स्टेक तकनीकी लेखों का संकलन है। फिर भी इसके पीछे सत्ता के केंद्रीकरण को सीमित करने की स्पष्ट चिंता मौजूद है। ब्यूटेरियन ऐसे डिजिटल ढांचों में रुचि रखते हैं जहां उपयोगकर्ता केवल उत्पाद के ग्राहक न रहें, बल्कि नियमों, संसाधनों और निर्णयों में कुछ भूमिका निभा सके। विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन इस दिशा का एक उदाहरण है, जिनमें कोड और सामुदायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सामूहिक निर्णय का प्रयास होता है। लेकिन पुस्तक के सामने सबसे कठिन प्रश्न यही है कि तकनीकी विकेंद्रीकरण राजनीतिक वैधता में कैसे बदलेगा। नोडों की संख्या अधिक होना, टोकन का वितरण व्यापक होना और कोड खुला होना उपयोगी संकेत हैं, पर ये अपने आप निष्पक्ष प्रतिनिधित्व या सामाजिक न्याय सिद्ध नहीं करते। किसके पास समय, ज्ञान और पूंजी है, कौन नियमों को समझ या बदल सकता है और नुकसान होने पर किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा, ये सवाल बने रहते हैं। इस सीमा पर पुस्तक को आलोचनात्मक ढंग से पढ़ना चाहिए। इसकी विशेषता तैयार राजनीतिक कार्यक्रम देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि प्रोटोकॉल डिजाइन में भी शासन के निर्णय छिपे होते हैं। आलोचनाएं सही रूप से याद दिलाती है कि समानता और सार्वजनिक हित के दावों को कानून, संस्थाओं और शक्ति संबंधों की ठोस चर्चा के बिना पूरा नहीं माना जा सकता। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो इथेरियम, ब्लॉकचेन डिजाइन और क्रिप्टो जगत के वैचारिक दावों को उसके संस्थापक की अपनी लेख की आवाज में समझना चाहते हैं। डेवलपर, तकनीकी नीति के विद्यार्थी, डिजिटल शासन के शोधकर्ता और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों में रुचि रखने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। पूर्ण शुरुआती पाठक को पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉकचेन और सहमति तंत्र की आधारभूत समझ बना लेनी चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक क्रमिक पाठ्यपुस्तक की तरह अवधारणाएं नहीं सिखाती। इसका व्यावहारिक लाभ किसी निवेश निर्णय में नहीं, बल्कि तकनीकी प्रणालियों के प्रोत्साहन, सुरक्षा और शासन को एक साथ परखने की क्षमता में है। ब्यूटेरियन के लेख यह समझने में मदद करते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक ऊर्जा का प्रश्न होने के साथ आर्थिक दंड और नेटवर्क रक्षा का प्रश्न भी है, तथा सार्वजनिक वस्तुओं का वित्त पोषण केवल कोड लिखने से पूरा नहीं होता। समान विषय की अनेक पुस्तकों से इसका अंतर लेखक की स्थिति है। यह बाहर से लिखी इथेरियम की कथा नहीं, बल्कि उसके निर्माण के दौरान विकसित हुए विचारों का प्राथमिक संकलन है। साथ ही इसकी सीमाएं भी इसका अध्ययन मूल्य बढ़ाती है। पाठक को तकनीकी आशावाद और राजनीतिक अधूरेपन दोनों से जूझना पड़ता है, इसलिए इसे अंतिम उत्तरों की पुस्तक के बजाय इंटरनेट आधारित संस्थाओं, सामूहिक समन्वय और विकेंद्रीकृत शक्ति की संभावनाओं पर गंभीर स्रोत के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं विटालिक ब्यूटेरियम, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।